भूल गया। हाँ ओके कार्तिक, अच्छा सरसों का बीज लेके आते हैं, अच्छा तो उसके बाद क्या हुआ? अच्छा उसके बाद क्या हुआ? हाँ उसके बाद, हाँ नील माधव के पास गया, अच्छा वो तो विश्वशु बोला, अच्छा तो मैं वो कौवा के बारे में बताया था, अच्छा तो कौवा का क्या हुआ? हाँ कौवा वो पानी मरकर पानी, हाँ कौवा ऐसे पेड़ से गिर गया और पानी में, हाँ जब पानी के साथ तालाब के पानी के साथ जब उसका स्पर्श हुआ, स्पर्श मिला पानी का, तो उसको चतुर्भुज स्वरूप मिल गया। चतुर्भुज स्वरूप का मतलब क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा होता है? वैकुंठ में आत्मा का स्वरूप कैसा होता है? चतुर्भुज रूप होता है। हाँ भगवान का जैसे चतुर्भुज रूप है वैसे, हाँ आत्मा का भी, भगवान के जब पार्षद जब बन जाता है आत्मा, जीवात्मा, तब जीव का भी भगवान का ही जैसा स्वरूप मिल जाता है। वैकुंठ में भगवान के कितने बाहें हैं? हाँ चार, और वृंदावन में दो। वेरी गुड। तो तब विद्यापति क्या सोचा? विद्यापति सोचा कि अगर मैं भी इस पानी में कूदकर मर जाए तो मेरा भी मुक्ति मिल जाएगा, मैं भी वैकुंठ में चले जाऊंगा। हाँ तब वो क्या, हाँ आत्महत्या कर लिया? नहीं, क्यों नहीं किया? वेरी गुड। आकाशवाणी हुआ था, आकाशवाणी, हाँ क्या हुआ था आकाशवाणी? कि विद्यापति, हाँ अब तुम मुक्ति का प्रयास मत करो, तुम्हारे लिए बहुत सारे काम बाकी रह गया। महाराज इंद्रदुम्न प्रतीक्षा कर रहा है कब तुम नील माधव के संदेश लेकर उनके पास वापस जाओगे, हाँ तो उनको ये खबर देना चाहिए। तो विद्यापति रुक गया। सबको याद है विद्यापति कौन है? हाँ विद्यापति सबको याद है। हाँ, विद्यापति महाराज इंद्रदुम्न का राज पुरोहित था, सबसे प्रधान पुरोहित, हाँ, था राज दरबार में, राजा के मंदिर में, राजा के मंदिर में भगवान का देखभाल वे करते थे। महाराज इंद्रदुम्न कौन है? कौन था? अवंती। अवंती कहाँ है? उज्जैन ही अवंती है। तो महाराज इंद्रदुम्न इस स्थान के ही राजा थे, हाँ इसी स्थान के ही राजा थे। बल्कि कब थे, कितने साल पहले, कौन से युग में ये था? हाँ सत्ययुग में। सत्ययुग का मतलब ये कौन से युग चल रहा है? कलियुग। कलियुग का स्थिति कितना समय तक होता है? सब खामोश हो गया। कलियुग का स्थिति कितनी लंबाई होता है? वेरी गुड। 432 हजार साल। तो कलियुग में कितना साल गुजर गए हैं? केवल 5000 साल गुजर गए हैं 432 हजार सालों में से। अच्छा कलियुग के पूर्व कौन सी युग था? द्वापर युग का स्थिति कितना था? हाँ 852,000। क्लास कौन सी भाषा में हो रहा है? 64,000। अच्छा, और द्वापर युग का पहले कौन सी युग थी? त्रेता युग। त्रेता युग का स्थिति कितना, कितनी लंबाई है? नहीं, त्रेता युग का कितना था? हाँ, 12,92,000 साल। और उसके पहले था सत्ययुग। सत्ययुग का स्थिति कितना साल तक होता है? 17,28,000 साल तक। तो अब बताओ, महाराज इंद्रदुम्न कम से कम कितने साल पहले यहां विराजमान थे? कलियुग का गया 5,000 साल, द्वापर युग का गया, हाँ, द्वापर युग का कितना गया? 8,32,64,000। और त्रेता युग का 17,92,000। तो सब जोड़ो, मैथमेटिक्स में कौन अच्छा दिमाग है किसका? 17,92,000 और 8,64,000, कितना हुआ? हाँ, 26 lakhs और वेरी गुड, 26,56,000 प्लस 5,000, हाँ, तो क्या हुआ? 26,61,000, 26,61,000 कम से कम। ये तो सत्ययुग तक, बल्कि सत्ययुग में उन्होंने थे। तो सोचो, लगाओ और कम से कम 10 लाख जोड़ो इसमें, तो कितना हुआ? 36,61,000। इतने साल पहले इस स्थान में महाराज इंद्रदुम्न विराजमान थे। तो इसका मतलब क्या होता है? ये अवंती नगरी जो है, ये कितनी पुरानी है? अवंती नगरी कम से कम 40 लाख साल पहले भी यहां था। और देखो, समय के हिसाब में 40 लाख क्या है? समय के हिसाब में, समय कैसे घूमता है पता है? समय सर्कुलर रूप में घूमता है, वृत्ताकार में घूमता है, वृत्त के आकार में। जैसे एक सेकंड के बाद और एक सेकंड आती है, एक मिनट के बाद और एक मिनट आती है, एक घंटा के बाद, तो कैसा चल रहा है? घंटा के बाद घंटा, घंटा के बाद घंटा, दिन के बाद दिन, हफ्ता के बाद महीने के बाद, साल के बाद, हजारों साल के बाद, लाखों साल के बाद, करोड़ों साल के बाद, तो ऐसे समय घूम रहा है। जो बोलता है कि ये मनुष्य का उत्पत्ति, जीव का उत्पत्ति हुआ था 10 लाख साल पहले, वो लोग बेवकूफ हैं, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, वो सारे मूर्ख हैं, कुछ पता नहीं है। काल कैसा है, समय के कैसा है? समय अनादि है, समय का आदि नहीं है। हाँ, सृष्टि जब हुआ था तब समय का विचार हो, बल्कि समय किसका प्रकाश है? समय काल भी भगवान का ही प्रकाश है, काल का भी अंत नहीं है। जो सर्कल है उसका शुरू कहां से है? वृत्त जो होता है सर्कल, बता सकते हो वृत्त का शुरू कहां से हुआ है? वैसे ही जो कुछ वृत्त के आकार में है उसका शुरू नहीं, तो काल वृत्त के आकार में है जैसे हम विचार किए। तो अवंती इतनी पुरानी जगह है और ये बहुत ही पवित्र स्थान है। इसके पहले हम कैसे और एक विचार कर सकते हैं? सृष्टि के आदि में, शुरू शुरू में देव और दानव के बीच अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर समुद्रों का, दूध के सागर का मंथन हो रहा था। उस मंथन के पश्चात जब अमृत निकला तो अमृत लेकर दानव और देवताओं के बीच संघर्ष होना शुरू हुआ। तो ये वो छीनने का कोशिश किया। दानव ने बोला ये हमारा प्राप्ति है, हमारे लिए है। देवता ने बोला नहीं, ये हमारे लिए है। तो ऐसे जब वापस में ये हो रहा था, टग ऑफ वॉर चल रहा था, तब कोई बूंद अमृत का गिरा था। उसका एक बूंद कहां गिरा था? अवंती में गिरा था, जिसके कारण यहां कुंभ मेला होता है। अमृत का कुंभ का मेला यहां होता है। मतलब ये जो क्षिप्रा नदी है, ये क्षिप्रा नदी के पानी अमृत बन जाता है। तो इसका मतलब यह है कि तब से ही, सृष्टि के शुरू से ही ये अवंती नगरी थी। तो इस अवंती नगरी के राजा थे महाराज इंद्रद्युम्न, और महाराज इंद्रद्युम्न ने भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और उन्होंने भगवान को दर्शन करने का प्रयासी थे। भगवान को दर्शन करना बहुत चाहते थे, बल्कि उस समय भगवान को दर्शन मिलने का उपाय केवल एक ही मात्र होता था, और उपाय कैसा था? ध्यान की माध्यम। ध्यान के कारण ध्यान करने के पश्चात जब ध्यान में सफलता मिलता है, तो ध्यान का सिद्धि जो है, उस सिद्धि अवस्था को, सिद्ध अवस्था को क्या कहा जाता है? ध्यान को समाधि। समाधि में क्या होता है, किसी को पता है? समाधि में क्या होता है? समाधि में हृदय में विराजमान परमात्मा को दर्शन। बल्कि ये जो ध्यान का जो प्रक्रिया है, ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। देखो, ध्यान करने का सबसे पहला जरूरत क्या होता है? ध्यान करने के लिए सबसे पहले एक एकांत स्थान में जाना पड़ता है। जो ध्यान करना चाहता है, वो क्या इस उज्जैन शहर में बैठकर ध्यान कर सकेंगे? ध्यान करने के लिए क्या करना होगा? ध्यान कैसे संभव होगा? ध्यान क्या 2-4 मिनट की सवाल है, या 2-4 घंटा का सवाल है, 2-4 दिनों के सवाल है, 2-4 महीने का सवाल है, 2-4 सालों का सवाल है? नहीं, हजारों साल। तो घर में बैठकर ध्यान करोगे तो बच्चे लोग आके बोलेंगे, पिताजी देखो ये क्या कर रहा है, हमको छेड़ रहे हैं। पत्नी आके बोलेगा, क्या बैठे हुए हो, जाओ बाजार से सामान ला। तो ऐसे ध्यान संभव होगा? कभी नहीं। इसलिए ध्यान के लिए एकांत स्थान में जाना जरूरी होता है। बल्कि इंद्रद्युम्न ने, राजा थे, महाराज थे, राजा के लिए अगर ध्यान करना है तो पर्वत हिमालय में जाना है या विंध्याचल में जाना था, तो कैसे जाएं? तब राजकार्य कौन देखेगा? तो मंत्री ने उनको समझाया, देखिए आप समय नहीं हो आपको राज्य त्याग कर जाने के, थोड़ा कोई साल और प्रतीक्षा कीजिए, राजकुमार जब बड़ा हो जाएगा तब उसके ऊपर राज्यभार अर्पण करके आप जा सकते हैं। बल्कि राजा का मन राजकाज में बिल्कुल नहीं था, एकदम उदासी बन गए, कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता था। केवल उन्होंने चाहते थे, कैसे मैं भगवान को साक्षात प्राप्त हूं, कैसे मैं भगवान को दर्शन करूं, कैसे मैं भगवान साक्षात रूप में भगवान को सेवा करूं। है ना, याद है सबको जो हम कल चर्चा कर चुके हैं। तब राजा ने, राजा को परम शोभा के कारण एक तीर्थ यात्री वहां आ पहुंचे, एक ब्राह्मण वहां राजसभा में आकर बताया कि नील पर्वत के लवण समुद्र के किनारे में जो नीलाद्री पर्वत हैं, उस पर्वत के शिखर पर भगवान नील माधव के रूप में विराजमान है, आप अगर चाहे तो उनको दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। बल्कि ये कहकर ही वो तैथिक ब्राह्मण अदृश्य हो गया। राजा का मन एक तरह तो बहुत ही उदासी हो गए, देखो मुझे ये खबर मिला, बल्कि कहाँ है ये नीलाद्री पर्वत वो तो मुझे पता नहीं है, तो मैं कैसे नील माधव को दर्शन करूंगा वहां जाकर। परंतु साथ साथ ये भी उनको आश्वासन हुआ मन में कि कम से कम भगवान तो यहां विराजमान है, तो उनको दर्शन शायद संभव हो। तो राजा ने अपने ब्राह्मणों को, राज काज में लिप्त हुए जो सारे ब्राह्मणों थे उनको भेजे थे वो नीलाद्री पर्वत में नील माधव को ढूंढने के लिए। तो सब वापस चले आए, बल्कि केवल राजपुरोहित विद्यापति वापस नहीं आया, और विद्यापति ढूंढते ढूंढते एक शवर के शवरोकपल्ली में गए, और वहां एकदम थके हुए वहां जब पहुंचे तो वहां के लोग उनको बहुत आदर के साथ उनको बुलाया, और शबरों को राजा विश्ववसु के घर में वो ठहरे, और कुछ दिन के ठहरने के बाद विश्ववसु के अनुरोध के अनुसार विश्ववसु को कन्या ललिता के साथ उनका विद्यापति का शादी हुआ, और तब उसको पता चला कि विश्ववसु हर रात को नील माधव को पूजा करने को जाता है। ये भगवान का ही, समझना होगा कि ये भी भगवान का ही आयोजन था, भगवान ने ही ये अरेंजमेंट किया। विद्यापति वहां आए, ललिता विश्ववसु को घर में ठहरे, ललिता के साथ शादी हुआ, और वो जब देखता था कि रात को विश्ववसु निकल जाते हैं और सुबह जब आते हैं, तब ललिता को पूछा तुम्हारे पिताजी कहाँ जाते हैं रात को, तो ललिता ने ऐसे बता दिया कि मेरा पिताजी नील माधव को पूजा करने को जाते हैं। तब विद्यापति का बहुत आनंद हुआ, अंत में नील माधव का संवाद मुझे मिल गया, नील माधव का प्राप्ति अब संभव हो गई। और जब विश्ववसु को पास अनुरोध किया गया कि विद्यापति को दर्शन कराने के लिए ले जाए, तो विश्ववसु एक शर्त से राजी हुआ कि उसको आंखों में पट्टी बांध के अंधा बना के ले जाएंगे ताकि उसको पता नहीं चले कहां है। विश्ववसु का मन में ये एक शंका था, भय था कि अगर किसी को पता चल जाए कि वो नील माधव का पूजा कर रहे हैं तो उसका काफी काफी तकलीफ होगा। क्यों? क्योंकि वैदिक विधान के अनुसार, शास्त्र के विधान के अनुसार ब्राह्मणों का ही केवल भगवान को पूजन करने का अधिकार रहता है, भगवान का पूजन केवल ब्राह्मण ही करते हैं, भगवान को पूजन क्षत्रिय भी नहीं कर सकते हैं, वैश्य भी नहीं करना चाहिए, शूद्र का तो नहीं है, और शवर जो है वो शूद्र से भी गिरे हुए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और शूद्र के से विषय भी जो नीचे हैं वो है अंतज, किराट हुनांध्र पुलिंद पुक्कश आभिरसुंभा जवना खसादय, ये सब अंतज है। शबर ऐसे अंतज है, मतलब शबरों के लिए भगवान को पूजन उस युग में एकदम कल्पनातीत था। तो इसलिए विश्ववसु का शंका था, अगर किसी को पता चल जाए तो उसका मुश्किल हो जाएगा, शायद राजा को अगर पता चलेगा तो राजा उसको सजा दे देंगे। तो यहां एक विचार और भी करना चाहिए कि ये जो ब्राह्मण को ही भगवान का पूजा करने का अधिकार था, ये ब्राह्मण जन्म के अनुसार नहीं गुण के अनुसार होता था, कर्म के अनुसार। चातुर्वर्णन मया सृष्ट गुण कर्म विभाग, ब्राह्मण का लड़का को ब्राह्मण बनने का सुविधा रहता था, जैसे एक डॉक्टर के लड़का को डॉक्टर बनने में सुविधा रहता है क्योंकि बचपन से वो देखता है पिता क्या करता है। तो वैसे ही एक ब्राह्मण को लड़का को ब्राह्मण बनने का सुयोग रहता है, बल्कि वो ही केवल ये विचार नहीं था। जैसे शास्त्र विचार हैं, जन्मना जायते शूद्र, जन्म के अनुसार सभी शूद्र है, चाहे वो ब्राह्मण हो या चंडाल हो, जन्मना जायते, जन्म के अनुसार सभी शूद्र है। बल्कि संस्कारात भवति द्विजः, द्विजः दूसरा जन्म, एक जन्म तो होता है ये शरीर का, पहला जन्म है शरीर का, और दूसरा जन्म किसका कैसे होता है, आत्मा का। वो जन्म कैसे होता है, दीक्षा के द्वारा। दीक्षा में ये जो दीक्षा के माध्यम जो जन्म होता है, इस जन्म के लिए पिता माता कौन होता है, वैदिक शास्त्र होता है माता, वेद माता, और सद्गुरु होते हैं पिता। गुरु जिन्होंने वेद वैदिक ज्ञान प्रदान करते हैं, इसके द्वारा दूसरी जन्म होता है, और जिसको दीक्षा होता है इसलिए उनको द्विज कहा जाता है। द्विज, द्विज मतलब द्वितीय बार जिसका जन्म हुआ है, द्विज। और उसके पश्चात, द्विजत्व के पश्चात क्या होता है, वेद पाठ का, वेद पाठ करने का, वेद पाठ करने का पात्रता मिलता था। They used to be qualified to study the Vedas. सदगुरु क्या शिक्षा देते हैं, वेद के माध्यम शिक्षा देते हैं, वेद है सिलेबस, ग्रंथ, जिसके द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान का शिक्षा प्राप्ति होता है। तो क्या हुआ, जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात भवति द्विज, वेद पाठात भवित विप्र, वेद पाठ करने के पश्चात विप्रत्व प्राप्ति होता है, और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तब वो ब्राह्मण बनता है। तो शबर के लिए तो भगवान को पूजन वैसे उचित नहीं था, उचित नहीं रहा। तो इसलिए विश्ववसु बहुत ही छिपा के रखा था कि कोई किसी को पता ना चले। केवल ललिता ही जानती थी कि पिताजी ने भगवान के नील माधव को पूजा करने के लिए जाते हैं। तो ललिता ने जब पिताजी को बताया आप विद्यापति को ले जाए भगवान नील माधव को दर्शन करने कराने के लिए, तो विश्ववसु बहुत नाराज हो गए, बहुत क्रोधित हो गए कि तुम क्यों उसको बताए। तो ललिता बोला वो मेरा पति है, उसको तो बताना हमारे लिए जरूरी है, उनके पास तो कोई छिपा के कोई कुछ नहीं रखना चाहिए। तब विद्यापति को ले जाने के लिए राजी हुआ विश्ववसु, बल्कि वो एक शर्त से, वो शर्त क्या था, आंखों में पट्टी बांध दी। और विद्यापति भी बहुत चतुर थे, बहुत बुद्धिमान थे, वो क्या किया, सरसों का दाना लिया साथ में और जाते वक्त वो सरसों का दाना फेंकते हुए चला, ताकि वो सरसों से सरसों का पौधे निकलेगा और उस मार्ग से पता चलेगा कि कहाँ है निर्माण। तो ये खबर देने के लिए जब विद्यापति वापस गए, मतलब यहाँ अवंती में आए, अवंती नगरी में महाराज इंद्रदुम्न को ये खबर देने के लिए, तो इंद्रदुम्न तुरंत ही निकल गए, चलो हम सब चलते हैं नील माधव को दर्शन करने। तो नील माधव कहाँ थे उस समय, नीलाद्रि पर्वत के शिखर पर। वो स्थान कहाँ है, वो स्थान है समुद्र के किनारे, नीलाद्रि पर्वत है जगन्नाथपुरी, जिसे नीलाद्रि कहा जाता है या शंख क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वो जो पर्वत है वो एक शंख की आकार के है। बल्कि आज लगता है वो सारे समान जमीन है, समतल है, वो जो पर्वत था वो पता नहीं चलता है क्योंकि बालू से सारे जगह भर गया है। बल्कि आज भी वहां के लोग जगन्नाथपुरी को नीलाद्रि कहते हैं, नीलाद्रि का मतलब नील, अद्रि, अद्रि का मतलब पर्वत, ब्लू माउंटेन, नीला पर्वत, शंख क्षेत्र भी बोलते हैं। तो उसके ऊपर भगवान विराजमान थे नील माधव के रूप में। बल्कि इंद्रदुम्न जब वहां पहुंचा, तब तक तो वो सरसों का जो दाने बिछाया गया था, फेंका गया था, वो सब पौधे बन गया, और वो मार्ग देखकर वो पहुंच गए नील माधव के मंदिर में। बल्कि जाकर देखा मंदिर शून्य है, मंदिर में भगवान नील माधव का विग्रह नहीं है। राजा पहले सोचा ये शायद ये विश्ववसु का काम होगा, ये नील माधव को कहीं छिपा के रखा होगा। तो जाके उसको बंदी किया सैनिकों ने, राजा के, बताओ नील माधव कहाँ है। बल्कि विश्ववसु कुछ नहीं बोला, वो एकदम मौन रह गए, कुछ नहीं बोला। तो राजा ने जगह घर, और राजा के जो सैनिकों थे, घर घर जाकर ढूंढा, कहीं भी नील माधव के विग्रह नहीं मिला। तो राजा बोला ठीक है, इस गांव को अवरोध कर दो, ताकि कोई आदमी यहां से ना निकल सके और कोई आदमी आ सके, ताकि खाने का कुछ बंदोबस्त नहीं रहेगा, और ऐसे उनको टॉर्चर करके उसको उनके पास से पता करेगा नील माधव का। तो ऐसे उस पल्ली अवरोध करने के बाद एक दिन इंद्रदुम्नों को रात में सपना में भगवान बोला नील इंद्रदुम्न, तुम क्यों ये निर्दोष शबड़ों को ऐसे सजा दे रहे हैं, उनको कष्ट दे रहे हैं? उन लोगों ने हमको छिपा के नहीं रखा, मैं ही अप्रकट हो गया हूं और मेरा नीलमाधव रूप तुम नहीं दर्शन कर पाओगे, बल्कि मैं दारू ब्रह्म के रूप में, एक लकड़ी के रूप में मैं समुद्रों के किनारे आ गया हूं, आया हूं। तुम उस लकड़ी से मेरा विग्रह को प्रकाश कर और उनका पूजा कर। तो ये सपना देखते ही महाराज इंद्रदुम्न में इंद्रदुम्न ने तुरंत समुद्र के किनारे गए और देखा, हाँ, एक लकड़ी समुद्र में भासमान है। तो उठाने का कोशिश किया, राजा तो बहुत शक्तिशाली थे पर उठा नहीं सका। राजा अपने सैनिकों को बुलाया, वो लोग भी सारे बहुत कष्ट उठाकर भी उठा नहीं सका। राजा अपने जितने हाथी था, घोड़ा था, सब लगाकर खोज उस लकड़ी को पानी से निकलने का कोशिश किया, नहीं सका। राजा तो बहुत परेशान हो गए, क्या करेंगे आप? तब राजा को निर्देश मिला सपना में कि तुम विश्ववसु और विद्यापति को इस लकड़ी उठाने के लिए नियोग कर, विश्ववसु और विद्यापति को बोलो ये लकड़ी उठाने के लिए, तब वो उठाना सकेंगे। तब राजा ने विश्ववसु को और विद्यापति को बताया कि तुम जाओ, हमको एक सपना में ऐसा निर्देश मिला है, तुम जाके उठाओ। जो हजारों सैनिकों हाथी घोड़ा से भी जिस लकड़ी को कोई पानी से उठाना नहीं सका, केवल दो आदमी विश्ववसु और विद्यापति एकदम आसानी से उस पर को पानी से निकाले। तो ये ले गया एक महल में, राजा के महल में। तो वहां अब राजा ने आयोजन किया कि अब इस लकड़ी से भगवान का विग्रह का प्रकाश होगा। तो सबसे बड़े जो शिल्पी थे, काठ के शिल्पी जो थे, उसको बुलाया, बल्कि वो जही अपना यंत्र से काम करना शुरू करने का कोशिश किया, सारे यंत्र टूट गया। जैसे ही लकड़ी में अपना यंत्र लगाता था, बटाली और हथौड़ी टूट जाता था। और बहुत सारे शिल्पी को बुलाया गया है, बल्कि कोई भी कुछ नहीं कर पाया, वो लकड़ी के ऊपर एक दाग भी नहीं काट सका। तो राजा ने तब बहुत मुश्किल में पड़ गए, तो क्या करेंगे। तो एक दिन एक बहुत वृद्ध, बहुत ही एक बुढ़े आदमी आए, इतना बुढ़ा था वो सही रूप से खड़ा भी नहीं हो सकता था। बुढ़ापा आने से शरीर ये हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। तो इतना ही दुर्बल हो गया था बुढ़ापे के कारण। वो आके बोला कि मेरा नाम है अनंत महाराणा और मैं आपका ये विग्रह प्रकाश करूंगा ये लकड़ी से। राजा ने बोला, बहुत सारे शिल्पी ने आकर कोशिश किया, बल्कि कोई नहीं सका। ये जहूं ही उन्होंने, जैसे ही उन्होंने अपना यंत्र लगाया काटने के लिए, तैयार करने के लिए काट को, तो टूट जाता है यंत्र। वो बोला, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, मैं ये विग्रह का प्रकाश करूंगा खुदाई करके, और बल्कि एक शर्त है। शर्त यह है कि मैं जितना जब तक काम करूंगा, जितने दिन मैं काम करूंगा, कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आएगा। अगर आएगा तो मैं काम छोड़ के चला जाऊंगा। राजा बोला ठीक है चलो, ये तो कोई कठिन शर्त नहीं है। अब मैं तो चाहता हूं कि ये भगवान का रूप, सच्चिदानंद रूप प्रकाश हो जाए। तो वो जाकर जहां लकड़ी था उस कमरा में गया, जाके अपना काम शुरू किया, दरवाजा बंद कर दिया। और बाहर से राजा सुन रहा था कि वो काठ के ऊपर जो काम हो रहा है उसका आवाज आ रहा है। राजा का मन बहुत प्रसन्न हो गया, कम से कम ये तो काम कर रहा है, अब शायद भगवान का मूर्ति का विग्रह का प्रकाश होगा। तब ऐसे कोई दिन गया, बल्कि एक दिन आवाज बंद हो गया। तो राजा बहुत चिंतित हो गए, क्या हुआ क्या हुआ, इतने बुढ़े आदमी हैं, क्या उसका कुछ तकलीफ हो गया, ये उसका क्या हार्ट अटैक हो गया है। तो अपना एंग्जाइटी के कारण, अपना उत्कंठा के कारण राजा ने घर के दरवाजा खोल दिया और घर में घुस गए, कमरा में घुस गए। उसके देखा तीन मूर्ति जो पूर्ण नहीं हुआ है, जिसका काम वहाँ पड़ा हुआ है, और जो अनंत महाराणा जो थे उसको वहाँ नहीं है, चले गए। राजा का मन में बहुत कष्ट हुआ कि जो मैं शर्त किया था, वादा किया था, वचन दिया था, वो वचन मैंने तोड़ दिया, और इसके कारण भगवान का मूर्ति असंपूर्ण रह गया, भगवान का विग्रह प्रकट नहीं हुआ। तो ये सोचकर राजा ने सोचा कि मैं अपना शरीर त्याग दूं, इस अपराध के कारण मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। ये सोचकर राजा ने प्रायोपवेशन में बैठे। प्रायोपवेशन में बैठने का मतलब होता है उन्होंने ये प्रतिज्ञा करके कुस आसन में बैठते हैं कि खाना नहीं खाएंगे, कुछ पिएंगे नहीं, ऐसे बैठे रहेंगे और इस तरह ना खाकर एकदम उपवासी रहकर एकदम पानी भी स्पर्श ना किए बिना अपना शरीर त्याग देंगे। तो वैसे कोई दिन गुजर गया, राजा कुछ खाना नहीं खाया, पानी नहीं स्पर्श किया। राजा ने प्रायोपवेशन में अपना शरीर त्यागने का संकल्प किया। तब एक दिन भगवान राजा को दर्शन देके बताया, इंद्रदुम्ना ये मत सोचो कि मेरा ये रूप असंपूर्ण है, ये ऐसा मत सोचो, तुम इस विग्रह को ही स्थापना करके पूजा करो, और ये भी मान लो कि इस रूप में मैं वैकुंठ में भी विराजमान हूं। ये रूप मेरा ऐसा नहीं कि काम खत्म हो ना होने के कारण ऐसा काट का हाल हुआ है, नहीं, ये मेरा नित्य रूप है, दिव्य रूप है, जिस रूप में मैं वैकुंठ में विराजमान नित्यकाल। और वो रूप कौन है? जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। तो आप देखिए, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा का प्रकट होने का कारण कौन थे? हाँ? महाराज इंद्रदुम्न थे। इंद्रदुम्न कहाँ के राजा थे? अवंती का राजा थे। अवंती कौन से स्थान है? यही है वो अवंती। तो देखिए, ये हमारे कितने परम सौभाग्य हैं कि यहाँ के राजा के कारण भगवान इस रूप में प्रकट हुए। महाराज इंद्रदुम्न को कृपा करने के लिए भगवान इस रूप लेकर प्रकट हुए थे। और आज इतने सालों के बाद भगवान अब यहां अवंती में आए हैं, जिनके कारण उन्होंने इस रूप में प्रकट हुए थे। मैं तो कभी कभी सोचता हूं भगवान के पास में मेरा खेद भी प्रकाश करता हूं कि अगर अब महाराज इंद्रदुम्न होते तो कितना वैभव और समृद्धि के साथ आपका पूजन आपका मंदिर बनाते थे, बल्कि मैं तो अक्षम हूं, मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। पर कृपा करके भगवान प्रकट हुए हैं, आए हैं, उन्हीं का अहितु की कृपा है। तो इस ऐसे जगन्नाथ का पूजन, जगन्नाथ का प्रकाश हुआ इस भौतिक जगत में। भगवान का ये जो रूप है, ये रूप वैकुंठ का रूप का ही प्रकाश है। भगवान के सारे जो विग्रह हैं, ये सारे विग्रह भगवान का ही स्वरूप है, जिस रूप में भगवान आध्यात्मिक जगत में नित्यकाल विराज करते हैं। तो ये सपना में भगवान इंद्रदुम्न को बताया था कि इस रूप में मैं वैकुंठ में भी विराजमान हूं। तो अब सवाल होता है, ये रूप कहां, इस कौन कहां भगवान इस रूप में विराजमान है? इसके पीछे भी एक घटना है। घटना ऐसी है कि जब कृष्णा ने द्वारका में लीला विलास कर रहे थे, भगवान का तब 16,000 महिषियां थे, पत्नियां थे, रानी थे, और उन्होंने देखते थे कि कृष्ण का मन वहां नहीं है। दिन की वक्त उनका मन और कहीं रहता था, absent minded, मन और कहीं छोड़ के चले गए है वहां, बल्कि उनका मन और कहीं था। कहां था? दिन की वक्त तो पता नहीं चलता था, बल्कि रात को सो जाते, जब लेट जाते थे भगवान, तब रानियों ने देखते थे, सुनते थे कि भगवान सपनों में वृंदब्रजवासियों को बुलाते हैं, हे राधे, हे नंद बाबा, हे यशोदा माई, हे माँ, हे सुबल, हे सुदाम, हे ललिते, हे विशाखे। तो ऐसे उसको लगता था कि रात को भगवान जब सोते थे तो वृंदावन चले जाते थे सपना में। तो रानियां ने देखते थे कि दिन के वक्त भी भगवान और कहीं है, मतलब वृंदावन में रहते हैं उनका मन, जब तक भी वो द्वारका में थे बल्कि उनका मन रहता था वृंदावन में, 24 घंटा भगवान वृंदावन में ही रहते थे, उनका मन वहां ही रहता था। तो उन्होंने सोचते थे कि वृंदावन में ऐसा क्या है जिसके कारण कृष्ण का मन हर समय वृंदावन में ही रहता है। तो उन्होंने रोहिणी माता के पास जाकर पूछा, अब बताएंगे वृंदावन में ऐसा क्या है जिसके कारण कृष्ण का मन वृंदावन में ही हर समय पड़ा रहता है। रोहिणी ने बोला, ठीक है मैं बताऊंगा, जब कृष्ण और बलराम यहां नहीं रहेंगे, जब कृष्ण और बलराम और कहीं चले जाएंगे तो मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि अगर कृष्ण और बलराम ये वृंदावन के बारे में सुन लेंगे तो वो बहुत ही कष्ट होगा उनको मन में। तो एक दिन कृष्ण और बलराम और कहीं चले गए थे, तो रानिया ने जाकर रोहिणी को बताया कि आप बताइए वृंदावन में कृष्ण क्या करता था, वृंदावन में क्या है, वृंदावन कैसी जगह है, वहां कृष्ण क्या करते थे। रोहिणी माता बोल सकती थी क्योंकि रोहिणी भी कृष्ण उस समय वृंदावन में ही थे, देवकी नहीं थी, रोहिणी थी। तो वैसे जब एक दिन कृष्ण बलराम नहीं था और उन्होंने जाकर पूछा बताइए आप कृष्ण क्या करता था वृंदावन में, बलराम क्या करता था, तो रोहिणी ने बोला ठीक है। तो सब रानियां ने रोहिणी को घेर कर बैठी और सुभद्रा को द्वार पर खड़ा कर दिया गया कि अगर कोई किसी को आने मत देना, क्योंकि ये वृंदावन का भगवान को जो लीला है ये बहुत गोपन लीला है और किसी को ये सुनना नहीं चाहिए क्योंकि वो समझेगा नहीं। तो सुभद्रा को दार रक्षी के रूप में रखा गया और सुभद्रा में रोहिणी जब सुनाने लगे वृंदावन की लीलाएं तो सुभद्रा भी द्वार में खड़े होकर सुनने लगी। तो इस समय कृष्ण बलराम वहां आ गए। सुभद्रा को उचित था कि बताना कि कृष्ण बलराम आ गए, उसको संकेत देना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था रोहिणी को कि आप कृष्ण बलराम आया, हाँ ये सावधान कृष्ण बलराम आ गया है। बल्कि ये वृंदावन की लीला कहानी सुनते सुनते सुभद्रा की भी मनोभाव ऐसा हो गया कि उसका कंठ रुद्ध हो गया, वो बात नहीं कर पाई, उसका कंठ से कोई स्वर नहीं निकला। तो सुभद्रा तो क्या किया, दो हाथ ऐसे ये करके कृष्ण बलराम को रोक दिया, जद्यपि मुंह से कुछ बात नहीं कर पाया बल्कि हाथों से रोक दिया। और तो कृष्ण और बलराम वहां खड़ा होकर सुनने लगे और वृंदावन की लीला सुनते सुनते कृष्ण एक अद्भुत रूप प्राप्त हो गए जो है जगन्नाथ के, जिस रूप में उनका मुंह एक कमल जैसे खिल गया, उनके आंखें कमल जैसे प्रफुल्लित हो गया और दोनों हाथ आगे बढ़ा दिया ताकि उन्होंने अपने ब्रजवासी भक्तों को आलिंगन कर लिया। ये है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की, जय श्री श्री राधा मदन मोहन की, जय श्री श्री गौर निताई की, गौर प्रेमानंदे।